Priya bhai, obey no, namo badai, chai bhi. So, brothers and sisters, just imagine if somebody said to you, what is Buddha Dhamma?
तो भाई और बहनों आप इसकी कल्पना कीजिए कि अगर आपको किसी ने पूछा कि बौद्ध धर्म क्या है
And they say, you can answer with just one word.
और आपको जवाब देना है केवल एक शब्द में
What word would you choose?
अब कौन सा शब्द आप इस्तेमाल करेंगे
What word could you find that would sum up the essence of the Buddha's teaching?
ऐसा कौन सा शब्द आप इस्तेमाल करेंगे जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं का समारोप हो या उसमें समावेश हो
So before I go any further, can I ask that there's no photographs at the front? It's disturbing for me, disturbing for you.
तो तस्वीरें आप बाजू से लीजिए आगे मत आइए ज्यादा
So yes, what word would you choose to sum up the Buddha Dhamma?
तो कौन सा शब्द आप इस्तेमाल करेंगे बौद्ध धर्म को पूरा समावेश करने के लिए उसके सार को
Well, I think the best word you could find to sum up the Buddha Dhamma would be anityata.
तो सबसे अच्छा शब्द अगर हम कोई ढूंढते हैं तो वह है अनित्यता
Anityata is the essence of the Dhamma.
तो अनित्यता ही धम्म का सार है
If you really understand anityata, you understand the Dhamma.
अगर आप अनित्यता को अगर ठीक से समझते हैं तभी आप धम्म को ठीक से जानते हैं
We could use three words.
तो हम तीन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते
हैं two words.
दो शब्द
Everything changes.
हर चीज बदलती है
Oh, that was more than that was four words. हर चीज बदलती है In English, much shorter. Everything changes. That's the essence of the Dhamma.
तो वह धम्म का सार है
The world is always changing.
तो दुनिया जो है वह हमेशा ही बदल रही है
Circumstances are always changing.
परिस्थितियां बदल रही है
That means the expression of the Dhamma needs constantly to change. That means that the expression of the Dhamma needs constantly to change. The way the Dhamma is expressed needs constantly to change.
तो इसका अर्थ यह है कि धम्म की अभिव्यक्ति जो है यह अभिव्यक्ति भी निरंतर बदल रही है
The world doesn't change, so you have to. The world changes, so you have to change the way you communicate.
तो जैसे दुनिया बदलती है वैसे आपको संवाद करने की जो चीजें हैं या परिस्थितियां हैं उसे बदलना होता है
इवन एट दिस वेरी प्लेस वी हैव अ रियली गुड एग्जांपल
इस स्थल में भी ऐसा एक सुंदर उदाहरण हमें मिलता है
Nobody before had ever talked about the Buddha Dhamma in relation to democracy.
किसी ने भी बौद्ध धर्म की बात लोकतंत्र के साथ जोड़कर नहीं की
At least I'm not aware of anybody.
लेकिन कम से कम मैं इसके बारे में वाकिफ नहीं हूँ
Of course, democracy had never been an issue in the past.
तो इतिहास में या गतकाल में लोकतंत्र कभी विषय नहीं रहा है
But बाबा साहेब talked about democracy in relation to the Buddha Dhamma.
लेकिन बाबा साहब ने लोकतंत्र की बात की बौद्ध धर्म को जोड़कर
Nobody had ever talked about creating a society of liberty, equality and fraternity.
किसी ने भी इस बात की कल्पना नहीं की कि समाज नए समाज का निर्माण हो जो समता स्वतंत्रता और बंधुता के ऊपर आधारित हो
Nobody had based that on the Buddha Dhamma.
कोई भी इसके ऊपर यानी जो उसकी बुनियाद धम्म पे हो ऐसा नहीं सोचा
The Dhamma doesn't change in itself, but its expression changes to address new situations.
तो धम्म अपने आप में बदलता नहीं है लेकिन उसकी अभिव्यक्ति जो है वह नए नए परिस्थितियों में बदलती है
This is something very important for us to remember.
यह काफी महत्वपूर्ण है हमें याद करने के लिए
Whenever we're communicating the Dhamma, we need to understand the situation we're communicating in.
तो जब कभी भी हम धम्म को संवादित करते हैं तो किस परिस्थितियों में हम लोग हैं इसके बारे में हमने ख्याल रखना चाहिए
And we need to make sure that our words meet the situation.
और हमने इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शब्द उन परिस्थितियों में लागू होने चाहिए
And we have such a wonderful example in Baba Sahib.
और इसका सबसे सुंदर उदाहरण अगर हम कहीं देखते हैं तो वह बाबा साहब है
He applied the Buddha Dhamma in the India of 1956.
उन्होंने धम्म को यहाँ लागू किया 1956 में भारत में.
And he addressed the issues that people really faced.
और उन्होंने जब लोग जो परिस्थितियों का सामना कर रहे थे उस परिस्थितियों में उसे लागू किया.
He showed them how the Dhamma could help them.
उन्होंने बताया कि कैसे धम्म उन्हें मदद कर सकता है.
It's actually important for us as followers of Baba Sahib to remember things are changing.
तो बाबा साहब के अनुयायी होने के नाते हमें इस बात की याद रखनी चाहिए कि हर चीज बदलती है.
The world isn't the same as it was in 1956.
अब दुनिया वैसी नहीं है जैसी वह 1956 में थी.
The lives of Buddhists are different, or at least for many Buddhists it's different.
अभी बौद्ध लोगों का जो जीवन है उस काल से अभी अलग है.
So we need to keep the Dhamma alive.
तो हमें धम्म को इस प्रकार से जीवित रखना चाहिए.
The whole Buddhist tradition represents this process.
तो पूरा जो बौद्ध परंपरा है इस प्रक्रिया को द्योतक है इस प्रक्रिया को बताती है.
It represents the process of someone teaching the Dhamma.
इस प्रक्रिया इस बात का द्योतक है कि कोई बौद्ध धम्म सिखाता है.
Then people practice the Dhamma in accordance with that teaching.
और उस शिक्षाओं के साथ साथ लोग उसका आचरण करते हैं.
Then times move on.
और समय आगे बढ़ते जाता है.
And the old way of teaching, the old way of practicing no longer really works.
और जिस प्रकार से हम पहले आचरण करते थे या धम्म को देखते थे या सुनते थे वह बाद में लागू नहीं होता.
Often what happens is then you get a fossil Buddhism.
तो अक्सर वह क्या होता है कि जो क्या कहते हैं फॉसिल को पाषाण कह सकते हैं जो मिलता है वैसे धम्म का पाषाण वह बन जाएगा.
Fossil? I don't think he's got it right. You know what a fossil is in geology?
Fossil को हिंदी में क्या कहते हैं? जीवाश्म. I don't think it's जीवाश्म. Anyway. जीवाश्म बन जाएगा धम्म का ऐसे होगा मुझे नहीं लगता जीवाश्म शब्द.
You know when an animal dies and it goes into the rock.
जब कोई सजीव उसका मृत्यु होता है तो वह पत्थरों में चला जाता है.
It turns to stone.
तो वह पत्थर जैसे बन जाता है.
You know they find dinosaur bones.
तो जैसे डायनासोर के अवशेष मिलते हैं.
But they're not really dinosaur bones. They're that the stones that are formed out of that bone.
तो वो जो पत्थर हमें मिलते हैं वो हड्डियों से बने हुए पत्थर मिलते हैं.
ये फॉसिल है. So what happens is the Dhamma or the Buddhism fossilizes.
तो इस प्रकार से क्या होगा वो धम्म जो है वैसे पाषाण के जैसे बन जाएगा.
It dies, huh?
इस प्रकार से वह मर जाएगा.
It's not the Dhamma that fossilizes, it's Buddhism that fossilizes.
तो धम्म पाषाण नहीं होता है जो बुद्धिज्म जिसे कहते हैं या बौद्ध धर्म जिसे कहते हैं वह पाषाण बन जाएगा.
I'm going to have to watch him tonight. So the Buddhism fossilizes.
तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म जो है वह उसका पाषाणीकरण हो जाएगा.
That is the way it's expressed fossilizes.
तो इस प्रकार से उसकी जो अभिव्यक्ति है वह भी पाषाणगत हो जाएगी.
So somebody has to come along and refresh it, renew it.
तो किसी को तो भी आना पड़ता है और उसे पुनर्जीवित करना होता है नया करना होता है.
This process has gone on again and again throughout Buddhist history.
तो यह प्रक्रिया जो है यह बार बार बौद्ध इतिहास में हुई है.
You have a living Dhamma.
एक जीवित धम्म होता है.
Then that slowly dies.
और फिर वो धीरे धीरे मर जाता है.
So somebody has to bring it to life again.
तो किसी को तो भी उसे पुनर्जीवन में लाना होता है.
Fortunately that process has gone on for 2500 years.
तो ऐसी प्रक्रिया 2500 साल से चल रही है.
You could even see the whole of the history of Buddhism as this process of living expression, dying, renewing.
तो आप पूरे बौद्ध परंपरा के इतिहास में यह देख सकते हैं कि जो जीवित परंपरा है बौद्ध धम्म की थी वह जिंदा हुई उसका पाषाणीकरण हुआ और फिर से वह जिंदा हुई.
We have such wonderful example in Dr. Babasaheb Ambedkar.
और इसका सबसे सुंदर उदाहरण आप देख सकते हैं बाबा साहब अम्बेडकर में.
He renewed Buddhism.
उन्होंने बौद्ध धम्म को पुनर्जीवित किया.
Not just in India but for the whole world.
केवल भारत के लिए नहीं लेकिन समूचे विश्व के लिए.
In much of the old Buddhist world, Buddhism is asleep.
बहुत सारे पुराने बौद्ध जगत में बौद्ध धर्म सो गया था.
But Baba Sahib woke it up.
लेकिन बाबा साहब ने उसे जगाया.
We have the same with our own teacher, Urgyen Sangrakshta.
वही हमारे यानी शिक्षक के साथ है, उर्गेन संरक्षित के साथ.
But the sangha, the notion of the sangha was dead in many places.
तो कई जगहों पे जो संघ की जो कल्पना थी वह मृतवत थी.
And Urgyen Sangrakshta brought it back to life.
और उर्गेन संरक्षित जी ने उसे वापस जीवन में लाया.
He created the kind of sangha that Baba Sahib himself was not able to do because he left us too soon.
तो उन्होंने ऐसे संघ की निर्माण की जो बाबा साहब अपने कल्पना से चाहते थे वे कर इसलिए नहीं पाए क्योंकि उनका तुरंत देहांत हुआ.
So in our Ratnavali, we're seeing these renewers of the Buddha Dhamma.
तो इस प्रकार से हम देखते हैं बौद्ध धम्म की कैसे पुनर्जीवितता हमेशा हुई है.
There are people who've re-expressed the truth of the Dhamma discovered by the Buddha in the terms of their own times.
तो हम यह देखते हैं कि अपने अपने समय में बौद्ध धम्म इस प्रकार से पुनर्जीवित होता रहा.
And to me, it's fallen to speak of two very great figures, very great renewers of the Buddha Dhamma.
लेकिन मेरे पास अभी ऐसे दो महान व्यक्ति अभी आए हैं जिन्होंने बौद्ध धम्म को पुनर्जीवित किया.
But I'm in a lot of difficulty about this.
लेकिन इसके बारे में मैं अभी कठिनाइयों में हूँ.
I have some words to have with Ritayus for giving me this topic.
तो अब मैं रुतायुष को थोड़ी यानी उनके साथ बात करूंगा क्यों उन्होंने मुझे यह विषय दिया.
He's given me a very difficult topic indeed.
उन्होंने मुझे काफी कठिन विषय दिया है.
But you are going to have a difficult time as well.
लेकिन आप लोगों को भी अभी कठिन समय होगा.
It's going to be difficult for me, but it's going to be difficult for you too.
अब मेरे लिए यह कठिन है तो यह आपके लिए भी कठिन होगा.
So put on your crash helmets. Put on your crash helmets.
तो आपके हेलमेट जो है आप अपने सर पे रख दीजिए.
Fasten your seat belts.
और अपने कमर की पेटी बांधिए.
We're going to go over some very difficult ground.
बहुत ही कठिन भूमि पर अभी हम जाने वाले हैं.
But we're going to start a little bit gently.
लेकिन धीरे धीरे हम इसकी शुरुआत करेंगे.
So these two great Buddhist figures are a little bit known to us actually through the Buddha and his Dhamma.
तो यह जो दो महान व्यक्ति है हम इनसे हमारा थोड़ा सा परिचय है बुद्ध और उनके धम्म इस ग्रंथ से.
You may not realize this, but some quotations from them are in the Buddha and his Dhamma.
आप लोगों को शायद यह ज्ञात नहीं होगा लेकिन ऐसे कुछ संदर्भ बुद्ध और उनके धम्म में हमें मिलते हैं.
You remember that Baba Sahib speaks of the Bodhisattva Bhumis, the 10 Bodhisattva Bhumis.
शायद आपने अगर पढ़ा हो तो आपको याद होगा बाबा साहब ने 10 बोधिसत्व भूमियों का जिक्र किया.
He speaks of that fairly early on in the Buddha and his Dhamma.
बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ लिखते हुए उन्होंने पहले ही इसका जिक्र किया है.
Well, he's quoting from a work by Acharya Asanga.
तो वह जो संदर्भ है वह संदर्भ बाबा साहब देते हैं आचार्य असंग से.
He's quoting from a work called the Bodhisattva Bhumi Shastra.
तो वह जो कार्य है जो काम है वह बोधिसत्व भूमि शास्त्र इस ग्रंथ से उन्होंने लिया है.
And then the very last passage in the Buddha and his Dhamma is a quotation from Vasubandhu.
और बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ का सबसे आखिरी जो परिच्छेद है वह वसुबंधु से उन्होंने लिया है.
You remember that passage which is called A Prayer to be Reborn in His Native Land.
आपको पता होगा वहां पे एक प्रतिज्ञा है कि मैं बोधिसत्व भूमि में फिर से पुनः.
No, the last passage in the Buddha and his Dhamma is called The Prayer to be Reborn in the Land of His Birth. In his native land. In the Buddha and his Dhamma. You know, that book by Baba Sahib.
तो आखिरी का जो परिच्छेद है उसको उसमें बाबा साहब ने इसका जिक्र किया है कि उस भूमि पे पुनर्जन्म लेने का.
Yeah, good.
सुखावत नहीं बोला उन्होंने.
Yeah. Yes, so the last passage in the whole of the Buddha and his Dhamma is a quotation from Vasubandhu.
तो वह वसुबंधु से उन्होंने संदर्भ लिया बुद्ध और उनके धम्म के आखिरी परिच्छेद में.
He and I are doing jugalbandi tonight.
आज हम दोनों की जुगलबंदी है.
but I'm playing the sarod, he's playing the tabla. So you know, you don't know that you know, but you actually know something of these two figures.
तो आप ऐसा जानते हैं कि हम उसे जानते नहीं हैं, लेकिन आप उसे कुछ हद तक जानते हैं.
And Baba Sahib knew of them clearly.
और बाबा साहब ने इसे स्पष्ट रूप से देखा.
So who are they?
तो अब वे कौन थे?
Well, they lived in the 4th century of the modern era.
तो चौथी शताब्दी में ये लोग रहे हैं.
That immediately creates a problem for us.
अब यह तुरंत ही हमारे लिए समस्या खड़ी करता है.
We don't know anything about them from Indian sources.
इनके जीवन के बारे में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है भारतीय स्तोत्रों से.
Because the history of India is not written by Buddhists.
क्योंकि भारत का जो इतिहास है वह बौद्धों ने लिखा नहीं है.
So much about Buddhist India we just don't know.
बहुत सारा ऐसा इतिहास है बौद्ध भारत के बारे में जिसे हम नहीं जानते.
It's often said that history is written by the victors.
ऐसा कहा जाता है कि जो लोग जीतते हैं या विजयी होते हैं वह लोग इतिहास लिखते हैं.
When the British were in India, they wrote the history of India.
तो जब लोग ब्रिटिश लोग भारत में थे तो उन्होंने भारत का इतिहास लिखा.
And of course what they showed was Indians were ignorant and stupid and didn't know anything and they needed the British.
और उन्होंने क्या बताने की कोशिश की कि भारत के लोग कुछ नहीं जानते हैं वे मूर्ख हैं. तो उन्होंने so what they should do?
They needed the British.
तो उन्हें अंग्रेजों की आवश्यकता है.
He's going to say quit India to me soon. So that the victor writes the history.
तो जो लोग विजयी होते हैं वह लोग इतिहास लिखते हैं.
So when Buddhism disappeared from India, the victors wrote the history of India.
तो जब बौद्ध धर्म भारत से चला गया तो जो लोग विजयी हुए उन्होंने भारत का इतिहास लिखा.
So we don't know the real history of early India, really.
तो हम नहीं जानते हैं भारत के यानी प्राचीन जो पूर्व इतिहास था उसके बारे में.
It's just told from one point of view.
केवल एक दृष्टिकोण से ही उसे बताया गया है.
So it's quite difficult to know very much about these two great figures.
तो हमें बहुत मुश्किल है इन दो महान व्यक्तियों के बारे में समझना या जानना.
Mostly what we know is their written works.
ज्यादातर हम क्या जानते हैं जो ग्रंथ उन्होंने लिखे उसके बारे में हम जानते हैं.
And we mainly know them in Chinese and Tibetan translation.
और ज्यादातर हम उसे चाइना या तिबेटन भाषाओं में जो भाषांतर है उसके बारे में हम जानते हैं.
The main things we know about them as individuals is through traditions in China and in Tibet.
तो उनके जीवन के बारे में या उनके स्थलों के बारे में जो चाइना और तिबेट में जो परंपराएं थी उन परंपराओं से हमें पता चलता है.
What a wealth India lost.
कितना बड़ा यानी ये जो धन है भारत ने खो दिया है.
Such depth, such wonder was lost.
इतनी गहराई और इतना आश्चर्य भारत ने खो दिया है.
And we're very very lucky that we're very fortunate that that wealth was preserved in China.
तो इस बात से हम सौभाग्यशाली कि यह कार्य चाइना में यानी सुरक्षित रहा.
And it was kept in the refrigerator of Tibet.
और तिबेट का जो रेफ्रिजरेटर है वहां पे उसे रखा गया.
So that we know something about these figures through translations into Tibetan and Chinese.
तो इन व्यक्तियों के बारे में जो चाइना और तिबेट में जो भाषांतर किए हुए जो ग्रंथ है उससे हम जानते हैं.
We've got some of their works in Sanskrit.
उनका कुछ कार्य संस्कृत में है.
But we don't know so much about them.
लेकिन उनके बारे में हमें ज्यादा ज्ञान नहीं.
This is very important for us to realize.
यह बात सबसे पहले समझना आसान है.
The true history of India, certainly from a Buddhist point of view, is not really yet known.
तो जो सच्चा जो इतिहास है भारत के बारे में बौद्ध दृष्टिकोण से अभी तक जाना गया नहीं है.
We know it was much greater than is acknowledged.
हम जानते हैं जितना हमें ज्ञात है उससे यह कितना यानी उससे अधिक है, उससे अधिक महान है.
Every time you dig in the ground, you find some Buddhist remains.
जब कभी भी आप किसी उत्खनन को करते हैं तो कुछ ना कुछ बौद्ध अवशेष हमें मिलते हैं.
So there's a lot of Buddhism still buried under the ground.
तो बहुत सारा बौद्ध धर्म इस तरीके से भारत के सतह के नीचे गड़ा हुआ है.
So I'm not going to say much about the lives of these people.
तो मैं ज्यादा इनके जीवन के बारे में आज कहने वाला नहीं हूँ.
Because we don't know much.
क्योंकि उनके बारे में हम ज्यादा जानते नहीं.
What we do know is from Tibet and China.
क्या हम जानते हैं तिबेट और चाइना के माध्यम से हम जानते हैं.
And the traditions are slightly different.
और परंपराएं जो है वह थोड़ी सी अलग है, भिन्न है.
But anyway, they were born in the period of the Gupta Empire.
तो उनका जो जन्म हुआ तब जो गुप्त राजाओं का जब राज था तब हुआ.
Probably at the time of Samudragupta.
शायद समुद्रगुप्त जो राजा थे उनके वक्त.
One of the greatest of the Guptas.
गुप्त जो का राजकाल जो था उसके वे प्रमुख राजा थे.
And they ruled much of India.
और उन्होंने काफी भारत का जो क्षेत्र है उस पर राज्य किया.
Right into Afghanistan, right across to Bengal.
अफगानिस्तान से बंगाल तक.
And I think most of India almost to the south.
और शायद काफी सारा क्षेत्र साउथ का उन्होंने उसके ऊपर राज्य किया था.
More or less the same extent as Samrat Ashok.
जितना यानी सम्राट अशोक का था शायद लगभग उतना ही उनका राज्य था.
And Chinese visitors to Gupta India say that it was a wonderful, remarkable society.
और
Chinese visitors to India at the time of the Guptas say it was a wonderful society.
और जब लोग चाइनीज यात्री जो थे, चीनी यात्री जो थे, जब वो भारत में आए तब वो बताते हैं कि कितना अच्छा वह समाज था.
Of course they came to India looking for Buddhism.
निश्चित वो जो चीनी यात्री भारत में आए वह भारत की खोज में आए थे. सॉरी, बौद्ध धर्म की खोज में आए थे.
And according to them, Samudragupta and many of the great Guptas were Buddhist, certainly in inclination.
तो निश्चित रूप से कुछ गुप्त जो राजा थे वह कुछ हद तक बौद्ध धर्म के लिए अनुकूल थे.
But that's not what Indian historical tradition says.
लेकिन भारतीय परंपराएं ऐसा हमें नहीं बताती है.
So that's just part of our problem.
तो यह हमारी समस्या की जड़ है.
It's up to you to sort this out.
तो यह आपके हाथ में, आप इसे सुलझाइए.
Some of you need to discover the real history of India.
आप में से कुछ लोगों ने भारत का जो सच्चा इतिहास है उसे खोजने की आवश्यकता है.
Fortunately, scholars are beginning to discover more and more about it.
अब अच्छी बात यह है कि बहुत सारे विद्वान इसकी खोज में लगे हैं.
So they were born at this time of great cultural wealth.
तो यह उस वक्त पैदा हुए जब काफी सांस्कृतिक धरोहर भारत की यानी अमीर थी, बहुत महान थी.
And Buddhism itself, the Buddha Dhamma itself was flourishing throughout India.
और बौद्ध धर्म अपने आप में पनप रहा था.
There were many monasteries.
बहुत सारे ऐसे विहार थे.
And there was deep scholarship going on.
और बहुत ही गहरी विद्वत्ता तब उपज रही थी.
And especially there was a deep investigation of Abhidhamma.
और वहां पे अभिधम्म की गहरी खोज हो रही थी.
इफ यू लाइक फिलोसफी एंड साइकोलॉजी,
अगर आपको दर्शन और मानस शास्त्र में रुचि है तो आप इसे देख सकते हैं.
बेस्ड अपॉन द बुद्ध धम्म, ऑफ कोर्स,
बौद्ध धम्म की बुनियाद पर.
सो दीस असंग एंड वसुबंधु वो बोर्न इन पेशावर.
तो असंग और वसुबंधु जो पेशावर है, पेशावर में इनका जन्म हुआ.
At that time it was part of the kingdom of Gandhara.
तो तब यह गंधार की राजधानी थी.
And you know that was a very important center of Buddhism.
और हम सब लोग जानते हैं कि गंधार यह बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा केंद्र था.
And that is where those very beautiful Buddha figures come from.
और वहीं से यह जो सुंदर बुद्ध की प्रतिमाएं हैं वह आती है.
And it's particularly interesting to me because Gandhara was under Greek influence as well as Indian influence.
और यह मेरे लिए रुचकर इसलिए है कि यह ग्रीक के प्रभाव में था जितना कि यह भारत के भी प्रभाव में था. तो दोनों परंपराओं के प्रभाव में गंधार था.
And in those Buddha images that you get from Gandhara, there's definitely a Greek aesthetic impression.
तो जो भी गन्नार की मूर्तियां हमें मिलती है उसमें ग्रीक सौंदर्य शास्त्र का प्रभाव हमें मिलता है.
So apparently these two brothers, they were brothers, they were born to the court Brahmin.
तो यह जो दो भाई थे
court Brahmin. The Brahmin of the court, the king's court.
तो यह जो दरबार था यह दरबारी ब्राह्मण थे और यह दोनों भाई थे.
But their mother was a devout Buddhist.
लेकिन उनकी माँ जो थी वह बौद्ध नहीं थी.
And in fact, there were three brothers.
वैसे देखा जाए तो वहाँ तीन भाई थे.
And she strongly urged her three sons to enter the Bhikshu Sangha.
और उनकी काफी प्रबल इच्छा थी कि ये तीनों भाई बौद्ध संघ में सम्मिलित हो.
And that's what they did.
और वही उन्होंने किया.
All her sons entered the Bhikshu Sangha.
तीनों भाई बौद्ध संघ में चले गए.
Well, you know, for an Indian mother, not to have grandchildren is a big thing.
तो आप जानते हैं कि भारतीय माँ को उसके नाती ना हो ये बहुत बड़ी बात होती है.
No, she sent her sons to the Bhikshu Sangha.
लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, उन्होंने अपने पुत्रों को संघ में भेजा.
And she seems to have been a quite remarkable woman in her own right.
और ऐसे लगता है कि वह भी अप्रतिम महिला थी अपने आप में.
They joined a monastery that was connected with one of the so-called Hinayana schools.
तो उन्होंने ऐसे विहार को यानी अपने आप से संलग्न किया जो हिनयान से जुड़ी हुई मोनेस्ट्री थी या वो विहार था.
And it was called the Sarvastivada tradition, probably.
और उसे श्रावस्तिवादीन परंपराएं कहते हैं.
Sarvastivada, yeah. It was probably the most important of the early schools, rather than the Theravada.
तो सर्वस्तिवादीन यह जो परंपरा है यह पहले के जो अति प्राचीन बौद्ध परंपराएं थे उससे जुड़ी हुई है.
And they joined the Sarvastivada, and Asanga and Vasubandhu quickly dived deep into the Dhamma.
और जैसे वह सर्वस्तिवादीन परंपरा में गए वह बहुत गहरे धम्म के अभ्यास में गए या धम्म में गए.
Asanga seems to have remained mainly in the north. Northwest.
तो असंग जो है वह ज्यादातर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में रहे.
And he became very, very devoted to meditation.
काफी ध्यान में उन्होंने अपनी कटिबद्धता की.
Vasubandhu seems to have had a more intellectual inclination.
और वसुबंधु जो थे वह काफी बुद्धिवादी थे.
And he went to the area we now call UP.
और वह उस क्षेत्र में गए जहां आधुनिक भारत में उसे उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं.
टू द एरिया अराउंड अलाहाबाद.
शायद अलाहाबाद के आसपास वो आए थे.
एंड ही स्टडीड वेरी डीपली द अभिधम्म.
और उन्होंने अभिधम्म का गहराई से अभ्यास किया.
बट ही बिगन टू बी डिससैटिस्फाइड विद द अभिधम्म एज़ ही लर्नड इट.
लेकिन जैसे उन्होंने अभिधम्म की शिक्षाओं को पढ़ा वह उससे वे असमाधानी थे.
This is quite interesting, isn't it?
अब यह काफी रोचक बात है.
He didn't just swallow whole what he was given.
जो उनको दिया गया बस उसको उन्होंने नहीं पिया.
He thought about it, he questioned it.
उन्होंने उसके बारे में विचार किया और उसके ऊपर सवाल उठाए.
And he began to be concerned that the Abhidhamma as he'd learnt it was not quite satisfactory.
और उन्होंने यह देखा कि जो अभिधम्म वे पढ़ रहे थे वह समाधानकारक नहीं है.
So he wrote a commentary on the Abhidhamma, a very important commentary called the Abhidhamma Kosha.
तो उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी अभिधम्म के ऊपर लिखी जिसे अभिधम्म कोश कहते हैं.
And it was from a different point of view to the one he'd learned.
और वह उनका उसमें उनका दृष्टिकोण अलग था जिस दृष्टिकोण से वह अभिधम्म सीखे.
And then he wrote a commentary on his own work.
और उन्होंने अपने ही काम के ऊपर एक टिप्पणी लिखी.
एंड हिज कमेंट्री वाज अ लिटिल बिट क्रिटिकल ऑफ हिज ओन वर्क.
और अपने ही काम की आलोचना उन्होंने इस काम में की.
दैट्स वेरी अनयूजुअल इज़न्ट इट.
अब यह बहुत ही असामान्य बात है.
इट्स कॉमन टू क्रिटिसाइज अदर पीपल.
यह बहुत आसान होता है अन्य लोगों की आलोचनाएं करना.
बट टू बी एबल टू से वेल आई गॉट इट रॉन्ग व्हेन आई रोट दैट, दैट्स क्वाइट डिफिकल्ट, क्वाइट रेयर.
लेकिन बहुत ही दुर्मीन होता है या कठिन या हमें ऐसा दुर्लभ होता है ऐसा मानना कि जो मैंने कहा जो मैंने लिखा वह गलत था या उतना सही नहीं था.
सो इट्स ऑब्वियसली अ वेरी इंटेलिजेंट मैन बट अ वेरी ऑनेस्ट वन.
वे बहुत ही बुद्धिमान थे लेकिन उतने ही वे प्रामाणिक थे.
So there he is studying Abhidhamma.
तो वहाँ पे वो अभिधम्म का अभ्यास कर रहे थे.
Teaching Abhidhamma, writing Abhidhamma.
अभिधम्म को लिख रहे थे, अभिधम्म को पढ़ा रहे थे.
Meanwhile, his brother Asanga is up in Kashmir region.
तो उस वक्त में उनके जो भाई थे असंग वह कश्मीर के क्षेत्र में आए थे.
And Kashmir was a famous center of meditation.
और कश्मीर जो था यह ध्यान के लिए काफी प्रसिद्ध था.
Because of course there are mountains, so it's easy to go into the solitude.
तो यह स्वाभाविक है वहाँ काफी पर्वते हैं तो एकांतवास में जाना आसान है.
And Asanga had begun to be dissatisfied too.
तो असंग भी अपने आप में असमाधानी थे.
The way he'd been taught in the so-called Hinayana tradition took him quite a long way.
तो जिस प्रकार से उन्होंने हीनयान में सीखा उससे वो काफी दूर गए.
But he wasn't satisfied.
लेकिन वे समाधानी नहीं थे.
He knew he needed to go further.
उन्हें पता था या उन्होंने यह जान लिया था कि जहां मैं हूँ वहां से मुझे आगे जाना है.
So they had the same sort of spirit, if you see what I mean, in their different traditions.
तो ऐसे ही यानी एक ही स्वभाव के या ऐसी ही जो खोज है ऐसी खोजी वृत्ति उनकी थी.
Maybe it was the influence of their mother.
हो सकता है यह उनके माँ का उनके ऊपर प्रभाव.
Maybe she taught them to think for themselves.
शायद माँ ने उन्हें ऐसे सिखाया कि आप अपने आप के लिए सोचिए.
You remember the Buddha was like this.
आप देखते हैं कि बुद्ध भी ऐसे ही थे.
He went to Uttaka Ramaputra and Alaraka Lama and he was not satisfied.
तो बुद्ध उद्धक रामपुत्र के पास गए, अलाराम कलाम के पास गए और उनसे वह समाधानी नहीं.
So like that he Asanga was not satisfied.
तो वैसे ही असंग भी असमाधानी थे, समाधानी नहीं थे.
And he began to encounter what we call Mahayana teachings.
और फिर उन्होंने जो महायानी जो शिक्षा है उसके संपर्क में भी आए.
I think last year you heard about Arya Nagarjun. Acharya Nagarjun.
तो पिछले साल आपने शायद आचार्य नागार्जुन के बारे में सुना.
सो ही केम अक्रॉस नागार्जुन'स टीचिंग्स.
तो वे नागार्जुन की जो शिक्षाएं हैं उनकी शिक्षा के संपर्क में आए.
दैट बिगन टू टेक हिम डीपर.
तो यह शिक्षाएं उन्हें अधिक गहराई में ले गई.
ही बिगन टू गेट डीपर एक्सपीरियंस.
अधिक गहरे अनुभव उन्हें आने लगे.
बट ही वाज आल्सो अ वेरी डिवोशनल मैन.
लेकिन वे काफी श्रद्धावान भी थे.
वेरी डिवोटेड टू द बुद्धा.
काफी बुद्ध के प्रति उनकी श्रद्धा थी या कटिबद्धता थी.
But he was also devoted to the Bodhisattva Maitreya.
लेकिन जो बोधिसत्व मैत्रेय जिसे हम कहते हैं उनके लिए भी उनकी यानी कटिबद्धता थी.
You know in the early tradition even in the Pali Suttas there's mention of the next Buddha.
तो पाली के पहले सूत्रों में ऐसे कुछ जिक्र आते हैं, उल्लेख आते हैं कि बाद के बुद्धों के.
The Buddha who will come when all trace of the Dhamma disappears from this earth.
तो जब सभी यह धम्म नष्ट हो जाएगा पृथ्वी से तब ऐसे बुद्ध आएंगे ऐसा वो मानते हैं.
That's the Buddha Maitreya.
और उसे बुद्ध मैत्रेय ही कहते हैं.
The friendly one, the loving one.
जो मैत्रीपूर्ण होगा, जो यानी प्यार से भरा होगा.
So he became very devoted to the figure of Maitreya.
तो वह जो प्रतिमा थी उस प्रतिमा के प्रति उनकी काफी यानी आस्था थी.
And he really wanted to see Maitreya.
और वो वाकई में मैत्रेय को देखना चाहते थे.
This is what the tradition says.
अब यह परंपराएं हमें बताती है.
I wasn't there, I don't know.
अब मैं वहां नहीं था, मुझे पता नहीं.
But this is what they say.
लेकिन ऐसा वे कहते हैं.
So every day for many many years you just meditated on Maitreya.
तो काफी सालों तक उन्होंने मैत्रेय के ऊपर ध्यान किया.
But he couldn't see anything.
लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखा.
He didn't feel any connection.
उसके साथ कुछ भी यानी संबंध उन्हें प्रस्तापित नहीं करते आए.
And every now and again he felt like giving up.
और हमेशा ही उन्हें ऐसे लगा कि मैंने इसे छोड़ देना चाहिए.
Why bother to go on?
मैं कि उसकी ये पीछे पड़ा हूँ.
I'm not getting anywhere.
मुझे यानी मैं कहीं नहीं पहुंच रहा हूँ.
You must feel this sometimes when you're meditating.
तो शायद आपको भी ऐसे महसूस होता है जब आप ध्यान करते हैं.
I've not even got to 10 in counting.
कभी कभी हम 10 तक गिनती भी नहीं कर पाते.
I can't remember what I'm doing.
हमें याद नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ.
Why bother?
किस लिए इसके साथ परेशान
हो. So he felt like that.
तो वैसा ही भाव उनके मन में आया.
He was trying to imagine Maitreya.
तो वह मैत्रेय को कल्पना करने की कोशिश कर रहे थे.
But he couldn't see anything.
लेकिन वे कुछ नहीं देख पाए.
So he became very dispirited indeed.
तो इसलिए काफी वे अस्वस्थ हुए.
And the story is that one day he saw a drip falling down onto a rock.
तो उन्होंने पत्थर से एक यानी क्या कह सकते कि बूंद गिरते हुए देखा.
And he saw that the drip had slowly worn away a channel in the rock.
और उस एक बूंद ने धीरे धीरे उस पत्थर में अपना रास्ता बनाया.
And he realized, you just have to keep going.
और तब उन्होंने ऐसे पता चला कि हमें जो हमारे प्रयास है वह निरंतर रखने चाहिए.
Drip by drip, you will build the channel.
बूंद से बूंद गिरते हुए आपको रास्ता बनेगा.
So he kept going.
तो उन्होंने फिर वे चलते रहे.
Then one day he again felt like giving up.
और एक दिन फिर से उन्हें ऐसे लगा कि मैंने यह सब कुछ छोड़ देना चाहिए.
And he saw a man with a metal bar.
और फिर उन्हें एक व्यक्ति दिखा जो यानी लोहे के सलाख के साथ.
And he was rubbing the bar with a cloth.
और वो उस लोहे के सलाख को कपड़े से साफ कर रहे थे.
So he asked him, "What are you doing?"
तो उन्होंने उनको पूछा कि यह क्या है.
He said, "I'm trying to make a needle."
Needle. उन्होंने उसे यह कहा कि मैं इसकी सुई बनाने की कोशिश कर रहा हूं.
He said, "Are how are you going to make a needle out of that cloth?"
तो उनको ऐसे लगा कि क्या मैं इस लोहे के सलाख से क्या मैं सुई बनाऊंगा.
He said, "Well, if I just keep rubbing it, eventually it'll be a needle."
उन्होंने ऐसे कहा कि अगर मैं ऐसे ही करता रहूंगा तो एक दिन यह सुई बन जाएगी.
So he realized, well, yes, if I keep rubbing away, I will break through.
तो उन्हें उससे यह ऐसी शिक्षा मिली कि अगर मैं अपने प्रयास निरंतर रहूं तो एक दिन मैं चीजों को भेद लूंगा.
Gone on for 20 years like this.
इस तरीके से वे 20 साल जीते रहे.
And he still didn't feel that he'd made contact with enlightenment, you could say.
तो आप ऐसा कह सकते हैं कि इतने निरंतर प्रयासों के बाद भी उन्हें ऐसे नहीं लगा कि वे संबोधि के संपर्क में.
That's what the figure of Maitreya represents.
यही मैत्रेय जो प्रतिमा है इसका प्रतीक है.
It represents enlightenment itself.
क्योंकि यह संबोधि को यानी प्रतिनिधित्व करती है, उसका द्योतक है.
Just as each of these figures, each of them represents enlightenment.
तो जैसे यह जो प्रतिमाएं हैं यह संबोधि का प्रतीक है.
So he was trying to see enlightenment through that figure.
तो उन प्रतिमाओं से वह संबोधि को देखने की कोशिश कर रहे थे.
But after 20 years, nothing.
लेकिन 20 साल के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला.
But he was walking along the road one day.
लेकिन एक दिन वो रास्ते से चल रहे थे.
And he saw a really horrible sight.
और उन्होंने बहुत ही भयावह ऐसा दृश्य देखा.
He saw a dog that had been wounded.
उन्होंने देखा कि यह एक कुत्ता जो था उसको काफी जख्म हुई थी.
In fact, its back legs had been cut off.
उसके जो पिछले पैर थे वह कट गए थे.
And it was badly wounded and crawling with maggots. Maggots, those little grubs that go into wounds.
और उनके जो जो पैर थे उन पे वो कीड़े पड़ गए थे.
And well, it was a horrible sight.
अब यह काफी यानी भयावह ऐसा दृश्य है.
But this dog was pulling itself along and barking at people as they went by.
लेकिन जब लोग उसके बाजू से गुजर रहे थे फिर भी वो अपने टूटे हुए पैर हिलाता था और भौंकता था.
And he felt an overwhelming compassion.
और उन्हें काफी करुणा का भाव उससे जागा.
He felt a deep sense of sympathy with that poor dog.
तो वह जो प्राणी था उस प्राणी के प्रति उनको सहानुभूति निर्माण हुई.
So overwhelmed with pity was he that he went to tend the dog.
तो उनको काफी दुख हुआ कि ऐसी भी अवस्था कभी सजीव की हो सकती है.
And he started to try to take the maggots off.
और उसके जो जंतु जो थे उनको जो कीड़े लगे थे उनको उन्होंने निकालने की कोशिश की.
But of course, just to touch the dog was to cause tremendous agony to it.
तो लेकिन उसको छूना भी उस कुत्ते के लिए काफी पीड़ादायी था.
So he thought, I must try to take those maggots off without hurting the dog.
तो उन्होंने ऐसे सोचा कि मैंने इसके कीड़ों को अलग निकालना चाहिए इसको पीड़ा न देते हुए.
I'm sorry, brothers and sisters, it's not a pleasant image.
मुझे माफ कीजिए भाई और बहनों, यह जो प्रतिमा मैं आपको बता रहा हूँ यह सुखद नहीं है.
But Ruthaeus asked me to talk about this.
लेकिन रुतायुष ने मुझे इसको कहने के लिए कहा.
So he took the maggots off with his tongue.
तो अपने जीवा से उन्होंने उन कीड़ों को निकालने की कोशिश की.
Because his tongue was sensitive enough to pick them off without hurting the dog.
तो उनकी जो जीभ थी वह इतनी संवेदनशील थी कि उससे उसके जख्मों को तकलीफ नहीं होती थी.
And while he was doing this with such deep compassion, suddenly he saw Maitreya.
तो जब वह इस करुणा से भरे हुए थे तब उन्होंने मैत्रेय को देखा.
It was compassion that revealed the Buddha.
तो यह करुणा जो है वह बुद्ध को दर्शाती है.
And so there's a tremendous awakening in him.
और ऐसी एक गहरी सजगता या जागरूकता उनमें आई.
A tremendous awakening of compassion.
एक बहुत ही प्रबल सजगता करुणा के बारे में.
Because of course Maitreya represents compassion. Maitreya.
क्योंकि मैत्रेय जो है यह करुणा को दर्शाते हैं.
So this was the kind of man he was.
तो इस प्रकार के वह व्यक्ति थे.
So now he was fully in the Mahayana.
तो इस प्रकार से वह पूरी तरह महायान में जा चुके थे.
He was practicing the Dhamma according to Nagarjuna's teaching of emptiness.
तो नागार्जुन की जो शून्यता जो है उस शून्यता के माध्यम से वह अभ्यास कर रहे थे.
And he was developing compassion. Well, he developed compassion.
और उन्होंने ऐसी करुणा को यानी विकसित किया था.
And these are the essence of the Mahayana.
तो यह महायान का सार है.
It's the union of emptiness and compassion.
जो शून्यता और करुणा का जो मिलाप है वह उसका सार है.
Meanwhile, back in UP, Vasubandhu was studying the Abhidhamma.
तो अभी हम उत्तर प्रदेश में जाते वहां पे वसुबंधु अभिधम्म का अभ्यास कर रहे थे.
And he made tremendous developments in the understanding of psychology and philosophy.
तो उन्होंने काफी गहरी समझ हासिल की मानस शास्त्र में और दर्शन शास्त्र में.
Several things I've read have said that he's really the founder of Indian logic.
अक्सर ऐसे कहा जाता है कि भारतीय तर्कशास्त्र जो है उसके वे संस्थापक रहे हैं.
You don't hear much about this, but apparently his work was the first work of logic in the Indian tradition.
अक्सर हम इसे ज्यादा सुनते नहीं है लेकिन उनका वह पहला काम है जो भारतीय तर्कशास्त्र के बारे में लिखा गया है.
So many of these arts were Buddhist in origin.
और बहुत सारे ऐसी कलाएं बौद्ध परंपरा से आई है.
Then his brother Asanga came to Ayodhya.
तो उनके जो भाई थे असंग वो अयोध्या आए.
And he lived in a monastery near the town.
और उसके उस यानी अयोध्या के पास उस गांव के पास जो विहार था उस वहां वो रहते थे.
Ayodhya was a very important center of Buddhism.
अयोध्या बौद्धों का एक बहुत बड़ा केंद्र था.
Some people say that underneath the Muslim remains are Hindu remains.
कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो मुस्लिम अवशेष है वो वहां पे हिंदू अवशेष है.
Underneath the Hindu remains are Buddhist remains.
और उसके तले बौद्ध अवशेष है ऐसा कहते हैं.
But we're not going to fight.
लेकिन हम उसके लिए झगड़ा नहीं करेंगे.
We just know that Buddhism was there.
हम जानते हैं कि उस क्षेत्र में बौद्ध धर्म था.
And Ayodhya was the main center for Asanga.
और अयोध्या जो है यह असंग का एक प्रमुख केंद्र था.
And he started to teach there.
और उन्होंने उसे पढ़ाने की कोशिश की.
And he had a tremendous effect.
और उसका काफी प्रभाव उनके ऊपर हुआ.
He's a brilliant teacher.
वे बहुत ही निष्णात शिक्षक थे.
So his brother came to see.
तो उनके भाई उन्हें मिलने आए.
Allahabad and Ayodhya not so far apart.
अब अलाहाबाद और अयोध्या ज्यादा दूर नहीं है.
And they had a tremendous meeting.
और उनकी बहुत ही महान ऐसी भेंट हुई.
And Asanga was able to convert, so to speak, to move his brother on into the Mahayana.
तो असंग जो है असंग ने वसुबंधु को महायान तक यानी उसकी शिक्षा तक गहराई में जाने के लिए मदद की.
And they worked very closely together.
और वे इकट्ठा काफी उन्होंने काम किया.
They met, wrote many works separately.
अलग अलग यानी अपने लेखिका में लेखक लेखन में उन्होंने काफी अपना काम प्रकाशित किया.
But exploring very much the same sort of themes.
और एक ही विषय को वो उजागर कर रहे थे.
And it's said that they are the principal founders of a major tradition of Buddhism.
और ऐसा कहा जाता है कि बौद्ध धर्म के एक प्रमुख परंपरा के वे संस्थापक थे.
What's called the Yogacara tradition.
और उस परंपरा को कहते हैं योगाचार परंपरा.
You know that you have Nagarjuna who founded the Madhyamaka.
आपको पता होगा कि नागार्जुन है, इन्होंने माध्यमिका को उसके वे संस्थापक थे.
Asanga and Vasubandhu founded the Yogacara.
और असंग और वसुबंधु ने योगाचार जो दर्शन है उसकी संस्थापना की.
And those two schools are the major influence on Buddhism in Tibet, China, Japan, Korea, and so on.
तो यह जो दो प्रमुख पंथ जो है बौद्ध धर्म के योगाचार और माध्यमिका, इनका काफी प्रभाव चाइना, कोरिया, जापान, तिबेट, इन सभी राष्ट्रों में रहा है.
And in fact, Nagarjuna and Asanga are called by the Tibetan tradition the two chief ornaments of the Buddha Dhamma.
तो तिबेट की परंपराओं को असंग और नागार्जुन को एक प्रमुख रत्न मानते हैं.
Now, this is where it gets difficult.
अब यहाँ से कहानी थोड़ी कठिन होती है.
If you find yourselves going to sleep, blame retires.
अगर आपको नींद आती है तो आप रुतायुष को दोष दीजिए.
He asked me to speak about this, so I have to speak about it.
अब उन्होंने मुझे बोलने के लिए कहा है, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है.
Because there's not much more for me to say about them as individuals.
अब इससे ज्यादा एक व्यक्ति के बारे में, उनके बारे में बताने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है.
So I've got to try to tell you something about their teaching.
तो मैं उनकी शिक्षाओं के बारे में आपको बताना चाहूंगा.
But this is really quite tough.
लेकिन यह काफी कठिन है.
So please fasten your seat belts.
तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध दीजिए.
Put your crash helmet on.
अपना हेलमेट आप रख लीजिए.
And get ready.
और आप अभी तैयार हो जाइए.
And it, please don't go to sleep because that can be very dangerous when you're driving.
तो आप सोइए मत, क्योंकि सोते हुए गाड़ी चलाना खतरनाक.
But I'm going to try to explain to you at least a little bit of Yogacara philosophy.
लेकिन आपको मैं कुछ हद तक कम से कम योगाचार जो दर्शन है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ.
Everybody ready?
Yes.
Helmet on?
Yes.
Seat belt fastened?
Yes.
Chalo. So, what they're asking is, what is the nature of our experience?
तो क्या वो हमें पूछ रहे हैं कि चीजों का वास्तविक अनुभव या स्वभाव क्या है?
Here we all are.
अब हम सब लोग यहाँ हैं.
We're all of us experiencing this situation.
अब इस परिस्थिति को हम सब लोग अभी अनुभव कर रहे हैं.
You can feel the ground under your feet.
आप जो जमीन है आपके पैरों के तले, उसे आप महसूस कर सकते हैं.
You can see the lights.
आप इस लाइट को देख सकते हैं.
You can see Maitreya Nagarjuna.
आप सुभूति को देख सकते हैं.
You can see this whole situation, huh?
तो यह सारी जो परिस्थिति है आपके आगे है.
That's your experience right now.
तो यह आपका अभी अनुभव है.
Maybe you feel a little bit of hunger.
शायद आपको थोड़ी भूख लग गई हो.
Maybe you feel a bit of cold.
शायद आपको थोड़ी सर्दी लग रही हो.
But you've got various experiences, huh?
तो इस प्रकार के अलग अलग अनुभव आपके पास है.
That's the situation.
अब यह परिस्थिति है.
So what is this situation?
अब यह जो परिस्थिति सुभूति ने बताई वह क्या है?
What are you experiencing right now?
क्या आप इस वक्त अनुभव कर रहे हैं?
Well, you might, for instance, let's just focus on one thing. Say, I'm experiencing Subhuti.
अब एक उदाहरण के लिए आप ऐसा कह सकते हैं कि मेरा अभी जो केंद्र है या लक्ष्य है वह सुभूति की ओर है.
Yeah, that seems very obvious, doesn't it?
अब यह काफी स्वाभाविक है.
You are looking at me, you can see me.
आप मुझे देख रहे हैं.
Unless you're asleep.
अगर आपको नींद नहीं आई है तो.
But if you can see me, what you think? I'm sorry. If you're awake, you think you can see me.
अगर आप जागे हुए हैं तो आप ऐसा सोचते हैं कि आप सुभूति को देख सकते हैं.
But are you really seeing me?
लेकिन क्या वाकई में आप इन्हें देख रहे हैं?
What is really going on?
वाकई में क्या हो रहा है?
Make sure your helmet is proper and your seat belt is tight.
आपकी कमर की पेटी बांधी हो, आपके हेलमेट आपके सर के ऊपर है.
What are you really seeing when you see me in front of me?
अगर आप आपके सामने मुझे अगर देखते हैं तो आप क्या देखते हैं?
Well, let's just take a common sense point of view.
तो आइए एक जो सामान्य जो भाव है उससे मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ.
Those lights are shining on my face.
अब यह जो प्रकाश है, यह प्रकाश मेरे चेहरे के ऊपर गिर रहा है.
Huh? The light from my face is shining onto your eye.
तो यह जो प्रकाश है वह आपके आंखों पे गिरता है.
And it's going into your eye through the lens.
जो आपके आंखों के जो भिंग है उससे वह अंदर जाता है.
Onto the rods and cones at the back of your eye, yes.
और आपकी जो यानी नेत्रिका है उस नेत्रिकाओं में यह जाता है.
I'm not very good on anatomy, but I think I know that.
तो मैं जो एनाटॉमी है उसमें अच्छा नहीं हूँ लेकिन मैं इसे जानता हूँ.
But the light from my face is hitting the rods and cones at the back of your eye.
तो मेरे यानी क्या है, तो दृष्टि पटल में यह प्रकाश जाता है.
And it's going into your optic nerve.
और ऑप्टिक नर्व में जाता है.
ये पक्का हिंदी शब्द है. An optic nerve is sending the signal to the visual cortex.
तो ऑप्टिक नर्व से जो आपके संदेश जाते हैं वो विजुअल कॉर्टेक्स में जाते हैं.
वाह 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 शाबाश. So in the brain, the grey matter in your brain.
तो हमारे मस्तिष्क में यह संदेश जाते हैं.
Then in some mysterious way, an image appears.
अब ऐसी कोई रहस्यवादी बात है जिससे यह प्रतिमा जो है हमारे दृष्टि पटल में आती है.
An image of this very handsome Englishman.
और वो जो प्रतिमा है यह इतने सुंदर अंग्रेजी व्यक्ति की है.
And this very handsome Indian. That's the image that appears, huh?
तो ऐसी प्रतिमा हम अपने दृष्टि पटल में देखते हैं.
So, is the image me?
तो क्या वह जो प्रतिमा आपके दृष्टि पटल में सुभूति की आई है, क्या वे सुभूति है?
Are you really seeing me?
क्या वाकई में आप मुझे देख रहे हैं?
You're seeing an image that's created by your brain.
तो आपके मस्तिष्क ने जो प्रतिमा का निर्माण किया है उस प्रतिमा को आप देख रहे हैं.
This is not just Yogacara theory, this is modern neuropsychology.
तो यह केवल योगाचार का दर्शन नहीं है लेकिन मॉडर्न आधुनिक जो न्यूरो साइकोलॉजी है इसका यह सिद्धांत है.
Our perceptual organs pick up signals from the world, they process them and create an image.
तो हमारी आकलन के जो इंद्रिय है वह आकलन के इंद्रिय प्रतिमा को निर्माण करते हैं और उस प्रतिमा को हम बाह्य जगत में देखते हैं.
जस्ट इमेजिन, आई कैन गिव यू अनदर एनालॉजी.
तो मैं आपको एक अभी रूपक बताना चाहता हूँ या उदाहरण देना चाहता हूँ.
योर मोबाइल फोन रिंग्स.
जैसे आप मोबाइल फोन पे फोन बजता है.
सो यू आंसर.
तो आप जवाब देते हैं.
हाँ बोला. You hear a voice speaking to you.
तो आप जो आवाज है उस आवाज को आप सुनते हैं.
Maybe it's your wife saying, "Bring home some vegetables."
शायद आपकी बीवी आपको बताती है कि ये सब्जी घर पे ले आइए.
Maybe it's your husband saying, "Which vegetables did you ask for?"
और आप अपने यानी पति कहता है कि कौन सी सब्जी आपने मुझे बताई.
And you think, "I'm talking to my husband or my wife."
और आप ऐसा सोचते हैं कि मैं मेरे पति या पत्नी के साथ बात कर रहा हूँ.
Actually, you're talking to a piece of technology made by Samsung.
तो आप वैसे देखा जाए तो एक यंत्र से बात करते हैं जो सैमसंग या दूसरी कंपनी ने बनाया
है. I didn't say disrespect.
केवल सैमसंग से ही आप सुनते हैं.
And the loudspeaker in the phone is converting the signals that have come, microwaves that have come to your phone, it's converting it into what sounds like your husband or wife or wife's voice.
तो यह जो स्पीकर होता है उस मोबाइल में, तो जो माइक्रोवेव्स वेव्स उसमें जो आते हैं वह उसके आवाज को परिवर्तन करते हैं और उस ध्वनि लहरियों को आप सुनते हैं.
यू आर नॉट एक्चुअली लिसनिंग टू देयर वॉइस.
तो वाकई में आप उस आवाज को नहीं सुनते.
You're listening to a technological reproduction of that voice.
तो जो तकनीक जो पुनर्निर्मित करती है उन ध्वनि लहरियों को, उन ध्वनि लहरियों को हम सुनते हैं.
It's probably only about 20% of the sound content.
तो जो वाकई में बोला गया है उसका 20% आवाज हमें आता है.
But your mind makes the voice of the person at the other end.
लेकिन आपका जो मस्तिष्क है वह आवाज यानी उसे बनाता है जो व्यक्ति दूसरे ओर पे बात कर रहा है.
All our perception is like that.
तो सभी हमारी जो आकलन पद्धतियां है वह वैसी है.
It's an interpretation of the information coming in through our senses.
तो जो भी इंद्रियों के पास जानकारी आती है उसका यह विश्लेषण है.
What you're hearing is not my voice.
तो जब आप मुझे सुन रहे हैं यह मेरी आवाज नहीं है.
इट्स योर ऑडिटरी नर्व्स क्रिएटिंग व्हाट यू आर मेकिंग इनटू माय वॉइस.
तो जो आपकी कान की सुनने की ध्वनि लहरियां है उस आवाज को आप सुन रहे हैं.
सो यू सी इट्स नॉट अ सिंपल मैटर.
तो आप समझ रहे हैं कि जितना हम आसान कहते हैं यह उतना आसान उतनी आसान बात नहीं है.
The yogacara is very interested in this situation.
तो योगाचार का जो दर्शन था यह इसमें काफी रुचि रखता है.
It says that actually all we know are these images.
तो वह ऐसे कहता है कि जो कुछ भी हम जानते हैं यह सारी हमारी प्रतिमाएं हैं.
We don't really know anything outside those images.
वाकई में हम जो प्रतिमा हमारे मस्तिष्क में तैयार होती है उससे बाहर हम कुछ नहीं जानते.
They call them vijñapti.
उसे उनकी दर्शन की भाषा में कहा गया है विज्ञप्ति.
Which really means something like representation.
विज्ञप्ति का अर्थ हम ऐसा कह सकते हैं कि पुनर्प्रतिसादीकरण.
Or you could even say विज्ञप्ति also means something like message or data.
विज्ञप्ति का अर्थ ऐसे होता है कि कुछ संदेश या कुछ जानकारी आपके पास आती है.
That's all we experience, they say.
वही हम उसका अनुभव करते हैं.
We don't experience things.
जो चीजें हैं या वस्तुएं हैं उनका हम अनुभव नहीं लेते.
We experience विज्ञप्ति.
हम जो विज्ञप्ति है या उसका जो सादरीकरण है उस सादरीकरण को हम अनुभव करते हैं.
That's no problem.
उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, यह बहुत समस्या नहीं है.
If we can just accept that, that's no problem.
अगर आप उसे स्वीकारते हैं तो वह समस्या नहीं है.
But they say that the problem is that we think that there's something out there that we can grasp.
लेकिन समस्या यह है कि आप ऐसा सोचते हैं कि बाह्य जगत में ऐसी कोई चीज है जो पक्की है जिसे मैं पूरी तरह पकड़ सकता हूं.
They call it a graphia, a grasp.
उसे ऐसा कहते हैं जो ग्रह्य है जिसे आकलन किया गया है.
And we think there's somebody in here who does the grasping.
और हम ऐसा सोचते हैं कि यहाँ ऐसा ऐसी कोई बात है जो उसे ग्राह्य करता है.
That's the grahaka.
और उसे ग्राहका कहते हैं.
But they said you can't actually find either the grasper or the grasp.
लेकिन ऐसा वे लोग कहते हैं कि ना आप ग्राह्य को ढूंढ सकते हैं ना आप ग्राहक को ढूंढ सकते हैं.
All there is just these mental processes.
और यह जो सारा जो यानी प्रक्रिया है यह मन की प्रक्रिया है या मानसिक प्रक्रिया है.
They do give us information, of course.
निश्चित रूप से वो हमें जानकारियां देते हैं.
But we mustn't think that the information they give us is referring to something fixed out there or something fixed in here.
लेकिन वो जो जानकारियां देते हैं उसे हमने ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ऐसी कोई पक्की बात बाह्य जगत में वहां है या बाह्य जगत में यहाँ है.
In fact, this is just an application of the basic teaching of anatma.
यही जो अनात्मवाद था यह अनात्म की मूलभूत शिक्षाएं हैं.
That's what the Buddha taught, isn't it?
यही बुद्ध ने सिखाया.
There's no fixed self in here.
यहाँ पे ऐसा कोई पक्की आत्मा का वास नहीं है.
Actually, there's no fixed anything out there.
और बाह्य जगत में भी ऐसी कोई नित्य पक्की बात नहीं है.
But the yogacarans were saying, if you actually realize that the images that appear in your mind, the sounds you hear and so forth are not things out there but representations, then you get close to anatta.
तो योगाचार हमें यही बताता है कि जो भी ध्वनि लहरियां या प्रतिमाएं आप यहाँ आगे देखते हैं उनका कोई पक्का अस्तित्व यहाँ नहीं है और पक्का अस्तित्व वहां नहीं है, यह अनात्म है.
So it's a way of being mindful.
तो यह तरीका है आपके स्मृतिवान होने का.
It's a way of approaching your experience.
आपके अनुभव को या अनुभव के दृष्टिकोण को लेना यह प्रक्रिया है.
You view everything with detachment.
हर चीज को आप अनासक्त होकर देखने की कोशिश करते हैं.
You know there's nothing to grasp.
आप जानते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है जिसे आप पकड़ सकते या ग्राह्य कर सकते हैं.
And there's nobody to grasp it.
और कोई भी ऐसा ग्राहक नहीं है जो उसे पकड़ने वाला है.
Okay, brothers and sisters, how are you? ठीक है? Yeah?
आप लोग ठीक है?
Yeah? So just a little bit further, keep your seat belts on and your crash helmets.
तो जो भी सूचना है वो आप ध्यान में रखिए और हम आगे चलते हैं.
I don't know how you're finding this, but we're going to go a bit further.
अब मुझे नहीं पता आपको ये कैसे लग रहा है लेकिन हम थोड़ा अभी आगे चलते हैं.
What they said was that if all there are these representations, actually what that means is there's only mind.
वो ऐसा कहते हैं कि जो भी यह सादरीकरण हो रहा है यह सादरीकरण आपके मन से आ रहा है.
They're sometimes called the Chittamatra school.
और कभी कभी उनको चित्तमात्र पंथ कहा गया है.
Chitta of course means mind or consciousness.
चित्त का अर्थ मन या चेतना होता है.
Matra means alone, only.
मात्र का अर्थ आपको पता है.
This only mind.
वह केवल मन है ऐसा माना गया है.
There's an appearance of something out there, an appearance of something in here.
कोई तो भी बात वहां प्रदर्शित होती है और कोई तो भी बात यहां प्रदर्शित होती है.
But these are just appearances.
यह दोनों भी केवल प्रदर्शन है.
You cannot find them.
वहां ऐसी कोई भी चीज या ठोस चीज आपको मिलती नहीं है.
In the terms of Nagarjuna's teaching, what you see, what appears, is empty.
नागार्जुन के भाषा में अगर बताया जाए तो जो कुछ भी आपको आकलन होता है या दर्शित होता है वह शून्य है.
In the terms of the early teaching, whatever appears is anatta.
और उसके पहले की शिक्षाओं में उसे अनात्म कहा गया है.
But there's only mind. This is what they taught.
लेकिन वह उन्होंने यह बताया कि यह केवल मन है.
And what they taught was that this mind is actually fresh and pure.
लेकिन क्या उन्होंने बताया कि मन जो है यह यानी तेजस्वी है.
I'm pure.
और शुद्ध है.
Of course, when I say mind, mind isn't a thing.
अब मैं जब मन कहता हूं तो वह कोई वस्तु नहीं है.
Mind is constantly changing.
मन भी निरंतर बदल रहा है.
Moment by moment, the mind is renewed.
हर क्षण में यह बदलता है नया होता है.
There's no such thing as mind.
ऐसी कोई यानी ठोस वस्तु नहीं है जिसे हम मन कहते हैं.
It's just a stream of mental energy.
वहां पे आपके मानसिक प्रक्रियाओं का प्रवाह है.
That is all there is, they said.
यही सब कुछ चीजें वहां है ऐसा कहा गया है.
The mind is in each moment arises fresh and pure.
मन जो है यह हमेशा ही ताजा और शुद्ध होता है.
But what happens is that we, through our habits from the past, defile it.
तो क्या होता है हमारी जो पूर्व आदतें हैं उन पूर्व आदतों से हम इसे दूषित करते हैं.
We add on to it unskillful emotion.
हम इसके ऊपर जो अकुशल भावनाएं हैं उन भावनाओं को रख देते हैं.
We distort it through our understanding.
हम हमारी जो समझ है उस समझ को नष्ट करते हैं.
That leads us to suffer.
और यह हमें दुख देता है.
If we can get rid of those defilements, the mind is intrinsically pure.
अगर हम इन क्लेशों से अगर मुक्त होते हैं तो वह मन शुद्ध होता है.
Remembering that there is no thing, mind.
लेकिन यह भी याद रखिए कि ऐसी कोई ठोस वस्तु नहीं है जिसे हम मन कह सकते हैं.
धम्म लाइफ इज अ प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग द माइंड.
धम्म जीवन जो होता है इस प्रकार से मन शुद्ध करने का यानी प्रक्रिया है.
सब पापस अकारणं कुशलास उपसंपदा सचित्त परियोदापनं एतं बुद्धान शासनम्. That's the teaching of the Buddha.
यह बुद्ध की शिक्षाएं हैं.
Purify the mind.
मन को शुद्ध करो.
get rid of the defilements.
जो क्लेश है उन क्लेशों से मुक्त हो.
Then the mind is fresh and pure.
तभी मन जो है आपका ताजा है या शुद्ध है.
If the mind was not fresh and pure, how could you attain liberation?
अगर मन आपका शुद्ध नहीं है तो फिर आपको मुक्ति कैसे मिलेगी?
So, brothers and sisters, we've gone on quite a long and difficult journey.
तो इस प्रकार से यह प्रवास है.
I don't suppose that many of you have been able to follow the whole journey.
मुझे पता नहीं कि आप सब लोग जो मैं कह रहा था उसका आप अनुकरण कर पा रहे थे.
This is a very big topic which takes a lot more explanation.
यह बहुत ही बड़ा विषय है जिसके लिए काफी संशोधन की भी आवश्यकता होती है.
But I was asked to talk about Vasubandhu and Asanga, so I have.
तो मुझे असंग और वसुबंधु के बारे में बोलने के लिए कहा गया इसलिए मैं कह रहा हूँ.
And I hope that at least you've got some flavor of what they're talking about.
लेकिन कम से कम आपको कुछ इसका स्वाद मिला होगा किसके बारे में वो बात कर रहे थे.
We've learned a number of things through looking at their lives.
हमने काफी चीजें देखी उनके जीवन के बारे में.
We've learned a number of things through looking at their teachings.
और उनके शिक्षाओं के बारे में हमने देखा.
First of all, we've learned don't be satisfied unless you really understand.
आप तब तक समाधानी मत होइए जब तक आप वाकई में सारी चीजें गहराई तक समझते नहीं हैं.
Don't be afraid to leave something behind if it doesn't fulfill your fulfill the truth.
आप चीजों को तब तक मत छोड़िए जब तक आपको वास्तविक सत्य हाथ में नहीं आ जाता.
Just as Vasubandhu and Asanga left behind the narrow teachings they came from and reached to more broad and deep ones.
जैसे कि असंग और वसुबंधु एक यानी संकुचित शिक्षाओं से वो आए लेकिन वह उस पायदान तक पहुंचे जो काफी विशाल थे.
Then we've seen that they stressed the importance of the mind.
और फिर हम यह देखते हैं कि उन्होंने मन के महत्व को ज्यादा जोर दिया.
In fact, they believed that mind was everything.
उन्होंने इस बात पर विश्वास किया कि मन ही सभी चीजों का यानी मूल स्थान है.
Remember the first verse of the Dhammapada.
आपको धम्मपद की पहली गाथा पता होगी.
All things are led by mind, made up of mind, and yes, all things are led by mind, made of mind, and developed by mind.
सारी जो चीजें यह मन से उपजती है सारी चीजें मन से ही अनुकरण करती है.
He'll say it in Pali now.
मनो
हाँ yeah.
मनो कुबंगमा धम्मा मनो सेठा मनो माया मान साचे पदुटेन भासति वा करोति.
So they very strongly believed in this.
तो इस प्रकार से उन्होंने काफी गहराई से इसके ऊपर यानी विश्वास रखा.
Baba Sahib stresses this, doesn't he, and what the Buddha's distinctive teachings were. Baba Sahib stressed this in the Buddha and his Dhamma as the distinctive teaching of the Buddha.
तो बाबा साहब ने इस शिक्षा के ऊपर बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ पे इस पे उन्होंने जोर दिया है.
So we can learn this from Asanga and Vasubandhu.
तो यह बातें हम असंग और वसुबंधु से पढ़ते हैं.
The most important thing is your mind.
तो सबसे महत्वपूर्ण बात वह यह बताते हैं कि आपका मन.
The most important thing is taking responsibility for your mind.
आपके मन के लिए जिम्मेदारी उठाना यह सबसे महत्वपूर्ण बात है.
And then of course they teach us that purifying the mind is crucial.
और वह यह बताते हैं कि मन को शुद्ध करना यह प्रमुख बात है.
They teach us that our whole Dhamma life is a process of purifying the mind. So its natural radiance shines through.
वह ऐसा बताते हैं कि धम्म जीवन जो है वह प्रक्रिया है आपके मन को शुद्ध करने की ताकि वह नैसर्गिकता स्वाभाविकता वह तेजस्वी रहे.
But the final lesson they teach us, and especially Asanga teach us, is the most important of all.
तो असंग जो सबसे आखिरी का पाठ पढ़ाते हैं वह सबसे महत्वपूर्ण है.
When the mind is fully realized, it is compassion.
वह ऐसा मानते हैं कि मन को जब आप पूरी तरह जानते हैं तो वह करुणावान ही होता है.
The nature of the mind is ultimately compassion.
मन का जो मूलतः या जो मूलभूत जो स्वभाव है वह करुणा का है.
The mind naturally reaches out to those who are suffering.
मन जो है यह स्वाभाविकता ही जो आप दुख देखते हैं आपके इर्द गिर्द उसको प्रतिसाद करता है.
It moves out towards them to heal them.
यह उन तक पहुंचने की कोशिश करता है उनको मदद करने के लिए.
To remove their suffering.
और उनके दुखों को दूर करने के लिए.
So from these great Buddhist heroes we can learn these important lessons.
तो यह जो नायक है जो बौद्ध इतिहास के उनसे यह पाठ हम सीख सकते हैं.
Not to compromise.
यानी आप समझौता मत कीजिए.
To recognize the significance of the mind.
मन के महत्व को जानिए.
To recognize that even the mind is everything.
यह पहचानिए कि मन ही सभी चीजों का उगम स्थान है.
To recognize that what we must do, our main work, is purifying the mind.
हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि हमने अपने मन का शुद्धिकरण करना चाहिए.
And then, compassion will shine forth.
और तभी करुणा जो है वह प्रकाशित होती है.
So I hope that I've done my job, Ritaus.
तो मुझे लगता है शायद मैंने मेरा कुछ काम किया है रिताइश.
It was a very difficult job.
यह काफी कठिन काम था.
I hope there's no crashes in the audience.
मुझे लगता है आप लोगों को आप कहीं क्रैश नहीं हुए.
I hope you weren't bored. I hope you didn't go to sleep.
शायद आप लोग सोए नहीं, आप लोग बोर नहीं हुए.
Don't worry if you didn't fully understand.
चिंता मत कीजिए अगर सारी बातें समझ में नहीं आई.
But I hope you got something from what I was talking about.
लेकिन मुझे आशा है कि कुछ ना कुछ आपको मिला होगा जो कुछ भी मैंने वक्तव्य किया उससे.
And if you're interested, well, then you'll have to study more.
अगर आपको इसमें रुचि है तो आप इसका अभ्यास कीजिए.
You'll have to ask Maitreya Nagarjuna to lead a seminar on Vasubandhu's 30 verses on mind.
तो Shall I translate this? तो आप मैत्रीवीर नागार्जुन को इसके ऊपर कार्यशाला लेने के लिए बुला सकते हैं कि उनके जो 30 गाथाएं जो प्रसिद्ध है उसके बारे में.
Very important their findings, these people.
इन्होंने जिन चीजों को खोजा यह काफी महत्वपूर्ण है.
And as our understanding of the Dhamma deepens, we'll come to find them more and more relevant to us.
और जैसे हम धम्म को गहराई से जानते हैं तब हम जानते हैं कि यह हमारे साथ इसका संबंध क्या है.
Maybe at the moment we don't fully really see what they're about.
अभी हम नहीं जानते हैं कि वाकई में यह क्या है.
But as time goes on, they will become more and more relevant to you.
जैसे ही समय जाता है तब आप देखेंगे कि यह हमारे जीवन के साथ कैसी मेल खाती है.
And you will see for yourself the truths that they're enunciating.
और आप देखेंगे कि सत्य जो है यही एक परिव्रज्ञा का उसमें चेतना होती है या प्रेरणा होती है.
But anyway, I'm very glad to have given you a little glimpse of these two important figures.
तो मुझे खुशी हुई कि कुछ तो भी झलक मैं इन दो महान व्यक्तियों की आपको दे पाया.
I certainly myself derived a great deal of understanding through studying their teachings.
मेरी अपनी समझ काफी गहरी हुई है जब मैंने इनका अच्छा यानी अभ्यास किया.
And I hope their teachings will come to life again in India.
मुझे आशा है कि ऐसी शिक्षाएं भारत में फिर से जीवन में आएगी.
Because they were the major teaching in India.
क्योंकि उस वक्त वह प्रमुख शिक्षाएं भारत की थी.
You know, Xuanzang came from China all the way to India.
आप जानते हैं कि Xuanzang चाइना से भारत आए.
He came to get these teachings.
वे केवल इन शिक्षाओं को सीखने के लिए भारत आए थे.
He took them back to India.
और
to China.
यहां से उन्होंने चाइना में वापस ले गए.
He thought they were so important.
क्योंकि उन्हें ऐसे लगा कि यह सबसे महत्वपूर्ण दर्शन है.
And Xuanzang is the main exponent in China of the teachings of Asanga and Vasubandhu.
और Xuanzang जो थे यह उनके सबसे प्रमुख नायक है असंग और वसुबंधु की शिक्षाओं को उजागर करने के लिए.
So you've got a little bit more of an idea of your own ancestry.
तो आपको शायद इसकी कल्पना आई होगी कि आपके पूर्वज कौन थे.
These great giants of Buddhist history.
तो यह जो महान नायक है बौद्ध इतिहास के.
And I'm very glad indeed that we have this opportunity to explore that.
और मुझे काफी खुशी हुई कि ऐसा मौका मिला कुछ तो भी इनके बारे में सुनने का.
नमो बुद्धाय. जय भीम.